हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के आठवें अध्याय का पहला श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध सात अध्याय आठ श्लोक एक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच। अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहुर्निरवद्यत्वान् नैव गुर्वनुशिक्षितम्। श्री नारद उवाच। अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहुर्निरवद्यत्वान् नैव गुर्वनुशिक्षितम्। श्री नारद उवाच। श्री नारद मुनि ने कहा। अथ तत्पश्चात दैत्य सुता असुरों के पुत्र प्रहलाद महाराज के सहपाठी सर्वे सभी श्रुत्वा सुनकर तत् उससे प्रहलाद से अनुवर्णितम भक्तिमय जीवन के विषय में कथन जगृहु स्वीकार किया। निरवद्यत्वात् उस उपदेश के श्रेष्ठ उपयोग के कारण न नहीं एव निसंदेह गुरु अनुशिक्षितम जो उनके गुरुओं ने पढ़ाया था। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। नारद मुनि ने आगे कहा, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने संड तथा अमरक नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। तात्पर्य यह प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त के उपदेश का प्रभाव है। यदि भक्त योग्य हो, सत्यनिष्ठ हो और कृष्ण भावना मृत के प्रति गंभीर हो तथा यदि वह प्रमाणिक गुरु के उपदेशों का उसी तरह पालन करे जिस तरह प्रहलाद महाराज नारद मुनि से प्राप्त उपदेशों का पालन अपना उपदेश देते समय कर रहे थे, तो ऐसा उपदेश प्रभावशाली होता है। जैसा कि श्रीमद्भागवतम 3:25:25 में कहा गया, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हितकर्ण रसायना कथा। यदि कोई सत अर्थात शुद्ध भक्त द्वारा दिए गए प्रवचन को समझने का प्रयास करता है तो वे उपदेश अत्यंत कर्ण प्रिय तथा हृदय को भले लगेंगे। इस तरह यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के लिए प्रेरित होता है और अपने जीवन में इस विधि का अभ्यास करता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम लौट जाने में सफल होता है। प्रहलाद महाराज की कृपा से उनके सारे सहपाठी असुर पुत्र वैष्णव हो गए। उन्हें अपने तथाकथित गुरुओं संड तथा अमर्क के बातें सुननी पसंद नहीं आई, जो उन्हें केवल कूटनीत, राजनीत, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे ही विषयों की शिक्षा दे रहे थे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कल हम लोग नारद जी के उपदेश को सुन रहे थे, इस अर्थ में प्रहलाद महाराज अपने ज्ञान के परंपरा को प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसी क्रम में गर्भस्थ अवस्था में प्रहलाद महाराज जो नारद जी से शिक्षा ग्रहण किए थे और उसको हो बहु अपने साथियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे। कल जैसा हम लोग सुने हैं, पत्थर से खान के पत्थर से सोने निकालने की बात, और उसी तरह इसी शरीर का विश्लेषण करके चैतन्य तत्व के ज्ञान प्राप्त करना, उसका साक्षात्कार करना, तो यह प्रोसेस सामान्य लोगों के लिए थोड़ा सा जटिल लगा, कठिन लगा। कई एक भक्त कह भी रहे थे, तो क्या अध्यात्मविद जो नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो उसका भक्ति में अधिकार नहीं है। लेकिन बात समझना चाहिए कि प्रहलाद महाराज जो भी यहां प्रस्तुति दे रहे हैं, तो वे सांख्य फिलॉसफी के हिसाब से, सांख्य योग के दृष्टि से प्रस्तुत किए। भक्ति तक के पहुंचने के कई एक दिशा है, लेकिन जब किसी सिस्टम की बात की जाती है तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक निरूपण किया जाएगा। तो प्रारंभिक ज्ञान का स्तर यही है, देह और आत्मा के ज्ञान को धारण करना। लेकिन प्रहलाद महाराज का जो उपदेश है, उसकी विशेषता यह है कि उपदेश दे रहे हैं कि जो धियो प्रवाह, ये जो संसार है, जो आत्मा का ताना बना नहीं है, केवल बुद्धि का है, तो इससे ऊपर उठना है। और समस्या जन्म मृत्यु की है, लेकिन ये जो सिस्टम दे रहे हैं और इसमें जन्म मृत्यु को ध्यान में नहीं रखा जाता है। कह रहे हैं कि ये सिस्टम है, इससे भगवान की रति प्राप्त हो जाएगी। और जैसे गुरु की सेवा करना, भगवान की कथा में श्रद्धा रखना, उनके गुणों का कीर्तन करना, और तल्लिंगे क्षणादि भी भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना, की स्तुति करना, प्रणाम करना, परिक्रमा करना, तो ये सब जो साधन है, तो यया संलभते रति, उससे रति की प्राप्ति हो जाती है। ये साधन भक्ति है, और इसके संपादन से भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और जब रति उत्पन्न हो गया, भाव भक्ति की प्राप्ति हो गई, तब तो चित्त तदाकार हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है, और उस समय संसार का अनुसंधान ही नहीं रहता। कई एक श्लोक में ऐसे भक्तों का लक्षण दिया गया है, समय के अभाव में हम उस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सार बिंदु है कि जब साधना करता है व्यक्ति, वो भाव स्तर पर पहुंच जाता है और चित्त तदाकार हो जाता है, अब उसे शरीर का अनुसंधान ही नहीं रहता, और उसके हृदय में ही भगवान की स्फुरणा होने लगती है। अब जब भगवान की भावना भर जाती है, तो अब भगवान का स्पर्श होने से उसकी अविद्या पूरी पूरी उसकी अविद्या पूरा पूरा नष्ट हो जाता है। और अविद्या नष्ट हो गया तो अब जन्म मृत्यु के कोई बात ही नहीं है। और व्यक्ति बहुत भारी सुख का अनुभव करता है, ब्रह्म निर्वाण। जो अद्वैतवादी लोग ब्रह्म में तदाकार हो करके जिस सुख का अनुभव करते हैं, जिस सुख का लाभ करते हैं, वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित में हो करके वैसे ही सुख का अनुभव करता है। और केवल वैसे ही सुख का नहीं, उससे भी उच्चतर सुख का। और अब कृष्ण का संपर्क हो रहा है तो अविद्या समाप्त हो जाते। जो ये धीवो प्रवाह, जो बुद्धि का व्यापार है, जिसका मूल कारण है, तो वो समाप्त हो जाता है। तो यह जो पद्धति है, तो इसका मुक्ति लक्ष्य नहीं है। मुक्ति तो रास्ते में मिल जाता है, इसका साइड इफेक्ट है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को भूसी की जरूरत है, भूसी ये जो धान के क्रम में तो एक अंश निकलता है, पुआल तो बड़ा बड़ा होता है, उसे छोटा छोटा होता है, प्राय गोबर पाथने में यूज करते हैं, या धान का छिलका, इसकी जरूरत हो और इसकी जरूरत है, तो व्यक्ति अब इसकी चिंता नहीं कर रहा है, धान की खेती कर रहा है चावल के लिए, तो चावल के लिए खेती कर रहा है, तो भूसा भूसी ये सब तो स्वतः मिल ही जाएगा ना। तो उसी तरह जो साधना है, तो वो साधना हम मुक्ति के लिए नहीं करते हैं, साधना हम भगवान के प्रेम के लिए करते हैं। और ये मुक्ति इत्यादि तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, रास्ते में ही प्राप्त हो जाएगी। अपवर्ग वर्तमानी, भगवान का परिचय दिया गया है कि जहां पहुंचने के रास्ते में ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सब है गौड़ फल है। इसी से जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो ध्यान देकर के पढ़ेंगे तो अजामिल का प्रसंग प्रस्तुत किया गया है, उसमें कहा गया है पाप निर्हरण के, पाप को दूर प्रायश्चित के अनेक उपाय है, लेकिन सबसे सम्यक उपाय है भक्ति योग, क्योंकि इसे अविद्या का नाश हो जाता है। अब पूरे कथानक को कह करके, पूरे सिद्धांत को स्थापित करके, और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एतावता अघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवत गुण रूप नामना। अरे कि भाई देखो, इस कथा से स्पष्ट हो गया कि पाप क्षय के लिए, पाप को खत्म करने के लिए भगवान के नाम गुण पिता के नाम गुण का कथा कीर्तन मत करो। अजब बात है, प्रारंभ किए कि अघ निर्हरण के लिए भक्ति सफिशियंट है, पूरा है, ये आत्यंतिक अघ निर्हरण हो जाता है, और कथा के अंत में कह रहे हैं कि एतावता अघ निर्हरणाय पुंसाम संकीर्तनम भगवत गुण रूप नामना। अरे कि अलम, एक दूसरा अर्थ भी है कि अघ निर्णय के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक अर्थ है कि भाई ये कथा कीर्तन पाप क्षय के लिए मत करो। ये नहीं कह रहे कि कथा कीर्तन मत करो, कथा कीर्तन पाप क्षय के लिए मत करो, क्योंकि वह तो इस घटना से स्पष्ट हो गया कि नामाभास से जो पुत्र के बहाने नाम लिया, उसी से प्राप्त हो गया, और उसको उद्देश्य रह करके भजन करने की जरूरत नहीं है, वह स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज प्रारंभ तो कर रहे हैं कि कैसे बीज निर्हरण हो, कैसे जन्म मृत्यु का, हमारे संसारिक वृत्ति का प्रवाह रुके, लेकिन जो साधन दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि यया संलभते रति, उसे रति की प्राप्ति हो जाती है, और रति की प्राप्ति होने से उसका गौड़ फल होता है कि चित्त में भगवान भर गए तो स्वतः ही अविद्या का नाश हो जाता है, जन्म मृत्यु का प्रवाह रुक जाता है, और प्लस भारी लाभ होता है कि निर्वाण सुखम, बहुत विचित्र सुख का अनुभव होता है। भगवान के भक्ति में जो सुख है वो वैसा सुख दूसरे जगह नहीं है। कई एक जगह इस बात को कहा गया है, तो जैसे ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि या निर्वृत्ति तनुवृता, जो सुख आपके भक्तों के मुख से कथा सुनने में है या आपके चरणों के ध्यान में है, वह ब्रह्म के अनुभव में भी नहीं है। तो प्रहलाद महाराज सिद्धांत दे रहे हैं कि कृष्ण भावना का अनुशीलन करने से भगवान का स्पर्श होता है, उनके माधुर्य का गुण का नाम का स्पर्श होता है, यह परम सुखद है, संसार की वृत्ति स्वतः समाप्त हो जाती। और सिद्धांत दे दिए, लेकिन जैसे कुछ भक्त लोग कल प्रश्न कर रहे थे, तब तो जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है वो भक्ति का अधिकारी नहीं है। ऐसे ही जो प्रहलाद महाराज के साथी हैं वे भी सोच रहे हैं कि भी इतना उन्नत चीज बतला रहे हैं, भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, तो जैसे परिवार के भरण पोषण में कठिनाई है तो वैसे तो भक्ति करने में भी कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कोटि प्रयास सुर बालका हरे उपासने, अरे भगवान के उपासना में क्या प्रयास करना है? जैसे सब जगह आकाश स्थित है वैसे भगवान सबके हृदय में है, और केवल तटस्थ नहीं सख्य रसे देना, बहुत भारी सौहार्द है। एक कई एक लोग साइंस के स्टूडेंट हैं कि साइंस ऐसा आविष्कार किया है कि वाटर प्रूफ कई एक चीज कर देता है, ऐसा है कि वहां पानी प्रवेश नहीं करेगा। एक घड़ी है वो कई एक मीटर तक पानी में जाइए नहीं जाएगा, वाटर प्रूफ। कभी कभी कहीं कहीं एयर टाइट कर देते हैं, लेकिन आज तक टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुआ कि आकाश को खत्म कर दे। कोई है किसी को जानकारी कि जहां खाली स्थान है वहां स्काई को आकाश को खत्म कर दे? वो नहीं खत्म, जहां भी खाली स्थान है वहां आकाश की सत्ता, आकाश सर्व सुलभ है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान तो छिद्रवत सतह, वे तो एकदम आकाश के समान सुलभ है, और उनके प्रयास भक्ति में क्या प्रयास करना है? कोई प्रयास नहीं है। अच्छा, दूसरे तरफ जो भोग के लिए है तो उसमें प्रयास करना है, और प्रयास करते हैं और उसका फल विपरीत जाएगा, खास करके गृहस्थी बांध करके सुख के लिए प्रयास करते हैं, दुख हटाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन रिजल्ट निश्चित उल्टा होता है, समस्या और बढ़ती ही जाती है, और इसलिए उसके लिए तुम लोग प्रयास मत करो। अच्छा, मान लीजिए कि कोई प्रयास करके भोग सामग्री अर्जित भी कर लिया तो उसे लाभ क्या होगा? वो कितने दिन का साथी है? वो तो सब शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। एक तो इतना परिश्रम करके जुटाते हैं कि भोग करने की सुविधा नहीं है, समय ही नहीं है। वो कोई कह सकता है कि अभी जुटा लेते हैं बाद में भोग करेंगे? अरे शरीर नष्ट होगा, सब नष्ट हो जाएगा। और कोई कोई चीज तो शरीर के पहले ही छोड़ देता है। धन के विषय में महाभारत में एक श्लोक है कि धनम ही पुरुषो लोके पुरुषम धनमेव एकम अवश्यम त्यजति। अरे भाई, व्यक्ति का देहांत हुआ धन को छोड़ देगा, धनानि भूमौ, भूमि में जो गाड़ करके रखे वही छूट जाएगा। तो ये तो बात की बात है, व्यक्ति धन को छोड़ देता है, कभी कभी धन ही व्यक्ति को छोड़ देता है। ऐसे बहुत लोगों को देखा जाता है कि बहुत भारी उनकी आमदनी है, पैसा वाले गिने जाते हैं, उनके पास बहुत धन है, और तब तक ये स्थिति आ जाते है कि कर्जा नहीं चुका सकते, गवर्नमेंट का प्रेशर होता है जेल करो क्या देखा हुआ है। हम लोग के गांव में एक व्यक्ति थे, गांव के बगल में, वो बतला रहे थे कि हम लोग छोटे छोटे थे तो सोने के सिक्का से खेलते थे। अब पहले से उनके पैतृक संपदा प्राप्त थी, छोटे छोटे बच्चे थे खेलते थे, लेकिन वही व्यक्ति के हम लोग स्थिति देखे कि उन्हें 10-20 रुपया के लिए भी कठिनाई है तो एक छोड़ देता है। तो ये जुटा भी लें तो ये कोई हित नहीं कर पाएगा, लेकिन क्योंकि दोनों का जाति अलग है, आत्मा नित्य है, और ये सब जो धन संपदा है भोग है तो देह के साथ ये खत्म हो जाएगा। और वे कह रहे हैं कि भक्ति कोई कर सकता है। अब श्लोक के अनुसार तो हम आज नहीं जाएंगे, लेकिन वो गिना रहे हैं, दैत्य भी कर सकते हैं, असुर भी कर सकते हैं, पक्षी भी कर सकते हैं, मनुष्य भी कर सकते हैं, देवता भी कर सकते हैं। उदाहरण से समझ सकते हैं, पक्षी, पक्षी में भी सबसे खराब पक्षी, अरे गिद्ध और कौआ से खराब पक्षी कौन होगा, तो वो भी भक्ति कर रहे हैं ना। तो भक्ति में सबका अधिकार है। और दूसरे तरफ सिद्धांत दे रहे हैं कि देखो, केवल ऊंचे कुल में जन्म ले लेना भगवान को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नालम द्विजत्वम, कोई ब्राह्मण है, ऋषि है, धनाढ्य है, बहुत कलाकार है, तो इतना मात्र से भगवान नहीं खुश होंगे। तो भगवान भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं, और भक्ति में भी खास करके दूसरे जीवों का सहयोग करते हैं तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कुल मिला करके वो स्थापित कर रहे हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेना। एतावाने व लोकेस्मिन पुंस स्वार्थ परस्मृत, सबसे बड़ा स्वार्थ है एकांत भक्ति गोविंद, भगवान के चरणों में नैष्ठिक भक्ति हो जाए, एकांतिक भक्ति हो जाए। अरे उसका क्या स्वरूप है, यत सर्वत्र तदीक्षण, उसका एक लक्षण दे रहे हैं भक्ति का कि सब जगह भगवान का दर्शन करना। प्रारंभिक अवस्था में तो हर प्राणियों के भीतर भगवान का दर्शन करते हैं परमात्मा, लेकिन जब भक्ति का स्तर उन्नत हो जाता है तो प्रकट भगवान दिखने लगते हैं। जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं तो उनको सब जगह कृष्ण की स्फुरणा होने लगती है। तो इस प्रकार कई प्रकार से भक्ति के महत्ता को बतला करके प्रहलाद महाराज अपने साथियों को उपदेश दिए, तब इसके प्रभाव को कह रहे हैं कि अथ दैत्य सुता सर्व श्रुत्वा तदनु वर्णितम। जब प्रहलाद महाराज ये सब वर्णन किए तो जग गृहुर, प्रहलाद महाराज के बातों को स्वीकार कर लिए। क्यों स्वीकार किए, क्यों बुद्धि से विचार कर रहे हैं कि निर्वद्यत्व, इसमें कोई दोष नहीं है। प्रहलाद महाराज जो उपदेश दे रहे हैं ये बिल्कुल दोष रहित है, और जो गुरु लोग पढ़ा रहे थे तो न एव उनको स्वीकार नहीं किए, क्योंकि अब तुलना करके देखे प्रहलाद महाराज के उपदेश पर विचार किए तो धर्म अर्थ काम की पढ़ाई में तो बहुत भारी दोष है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कह रहे हैं कि नारद जी जो उपदेश दिए थे तो उसको स्वीकार कर लिए, और जगह उसको पूरा पूरा स्वीकार कर लिए। अब तो जब स्वीकार कर लिए तो स्कूल का क्लाइमेट ही चेंज हो गया, सब चीज बदल गया, सब बच्चों का व्यवहार बदल गया। तो अथाचार्य सुतस्ते बुद्धि में एकांत संस्थिता, भी टीचर का तो स्टूडेंट पर ध्यान होता ही, वो लोग देखे कि इनके बुद्धि तो एकदम भक्ति में स्थिर हो गए। तो जो प्रहलाद महाराज के साथी हैं उनके बुद्धि भगवान में निष्ठ हो गई, भक्ति में निष्ठ हो गई, एकदम स्थित हो गई, लेकिन अलक्ष्य भीता। अब इन बच्चों के स्थिति को देख करके टीचर लोग भयभीत हो गए। वे भय का कारण था, जब स्कूल में आए थे तो जब बच्चे को गार्जियन के पास भेजा गया तो एक कस्पु पूछा कि बेटा किंचित उच्चता, जो तुम पढ़े हो उसमें कुछ भी बोलो। तो यह बोला प्रहलाद, जैसे आप सुबह सुन रहे थे कि तत् साधु मुन्य, अरे जो हम भी पढ़े हैं तो उसमें यही मानते हैं कि घर गृहस्थी को छोड़ करके वन में जाकर के व्यक्ति भगवान का आश्रय ले। ध्यान रखना चाहिए कि प्रहलाद महाराज यह नहीं कह रहे हैं कि घर गृहस्थी को छोड़ करके वन में चला जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। यद हरि माश्रय, वन में जा करके जो भगवान का भक्ति कर रहा, भगवान का आश्रय ले रहा, तत् साधु मुन्य, इसको मैं अच्छा मानता। वो हंसने लगा कि ये क्या ये सीख लिया, और टीचरों को निर्देश दिया सम्यक विधार्यता, तुम लोग ठीक से देखभाल करो, कोई छिप करके इसको दूसरा शिक्षा दे रहा है, तुम लोगों की जिम्मेवारी है। अब फिर दोबारा आए, अब हिरण्यकश्यपु पूछा कि जो पढ़ाई किए हो उसमें सबसे अच्छी बात जो है उसको बतलाओ। वो तो धड़ाम से बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु। जब यह बोले और हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हुआ और टीचरों पर किया कि क्या तुम लोग कर रहे हो, ये कैसे लड़के की बुद्धि भ्रमित हो रही है, देखो तुम लोग ठीक से रहो नहीं तो अब तुमको दंडित करेंगे। टीचर तो कांपने लगे, बहुत पूछे क्या हम लोग तो पढ़ाए नहीं है, तुम ऐसी बुद्धि कहां से आ गए। अब वे सिद्धांत दिए, टीचरों के सामने समस्या थी कहीं सस्पेंड कर दे। तो अब तो इतना वो कुपित था हिरण्यकश्यपु के सीधे आदेश दे दिया कि किसी तरह इसको मार डाला जाए, चाहे बीस दे करके पर्वत से गिरा करके आग में जला करके, और सब उपाय किया गया लेकिन प्रहलाद पर कुछ असर नहीं हुआ। तो भयभीत हो गए, नहीं हिरण्यकश्यपु भयभीत हो गया कि अरे अब तो लगता है कि इसी कारण हमारा वध होगा, और बहुत चिंता में पड़ा। तो इस बार टीचर लोग अपने से प्रहलाद को ले गए कि देखिए आप चिंता मत कीजिए, अरे बच्चा है, बुद्धि बदलती है, केवल उतने दिन तक हम लोगों को दे दीजिए जब तक हम लोगों के पिताजी नहीं आ जाते, वे आएंगे सब ये ठीक हो जाएगा। तो वे तो अपने से प्रहलाद को लिए थे और तब तक रिजल्ट उल्टा, तो कह रहे हैं कि अलक्ष्य भीता, अब तो बहुत भयभीत हुए, तो अब तो एकदम डिसमिस ही कर सकता है। तो राज्ञ आवेदय दिया था, और कोई घटना है और जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं तो उनका प्रथम कर्तव्य होता है कि कोई घटना हो गई तो अपने ऊपर के व्यक्ति को सूचना देना चाहिए, बतलाना चाहिए। तो अब तो विषम घटना हो गई, सब बच्चे दूसरे तरफ मुड़ गए, अब तो एक त्वरिता बहुत तेजी से गए और राज्ञ आवेदय दिया था। जैसे जैसे घटना हुई है, जो स्थिति है, हो बहु राजा से ये लोग बतलाए। अब राजा इस बात को सुना तो कोपावेशा चलत गात्र पुत्रम हंतु मनेदत है, और उसको बहुत क्रोध आया कि अकेले था, ये शत्रु का पक्षधर था, अब पूरे समाज को हमारे शत्रु का पक्षधर बना रहा है, यह तो बहुत भारी अनर्थ हो रहा है। और कहा कि अब तो इसको मार ही डालना चाहिए। छिप्ता परुषया वाचा प्रहलादम अतदरहण, नारद जी कह रहे हैं कि बहुत उनको गाली दी प्रहलाद को, बहुत कटु वचन बोला, यद्यपि प्रहलाद महाराज इसके योग्य नहीं थे। आहे क्षमाण पापे न तिरफ चीने न चक्षुषा, क्रोध से एकदम टेढ़ी दृष्टि करके प्रहलाद के तरफ देख रहा था और आह उनसे कहा। और प्रहलाद जी के विषय में कह रहे हैं कि प्रफ्रयावनतम दांतम बद्धांजलिम अवस्थितम, हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोध में है, क्रोध के मारे टेढ़ी दृष्टि से देख रहा, लेकिन प्रहलाद महाराज बिल्कुल नम्र है, हाथ जोड़ करके वहीं खड़े हैं। सर्प पदाहित इव श्वसन प्रकृति दारुण, जैसे कोई सांप है तो ऐसे ही क्रोध के आवेश में रहता है, खतरनाक है, ऊपर से पैर से दब जा तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है। और उसी तरह हिरण्यकश्यपु तो असुर है, स्वभाव से ही क्रोध से युक्त है, लेकिन टीचर लोग जो बात बोले हैं तो उससे उसका क्रोध और बढ़ गया और प्रहलाद महाराज से कहने लगा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मच्छासन धृतम नेश्यत्वाद जमक्षय। बहुत गाली दिया, बहुत अपशब्द बोला, कि अब हद हो गया, तुमको अब जमराज जी के लोक भेज दूंगा, हमारे कुल परंपरा को तुम नष्ट करने वाले, तुम्हारी बुद्धि एकदम बेकार है, कुछ तुमको सेंस नहीं है और हमारे अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हो, तो अब तो सीधे जमराज जी के पास जाओ। अरे हमारे हमारे अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हो, हमारी स्थिति को जानते हो, क्रुद्धस्य जस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, जब मैं क्रोध करता हूं तो लोकपाल सहित तीनों लोक डरता है, और तस्य मैं भीतवन मूढ़ा शासनम किम बलोत्यगा, और ऐसे मेरे शासन का तुम अतिक्रमण कर रहे हो, किसके बल से ऐसा कर रहे हो, आखिर तुम्हारा कोई सपोर्ट होगा तब ना इतना भारी साहस कर रहे हो, किसके बल से ऐसा कर रहे हो। जिस व्यक्ति से तीनों लोक कांपता है उसके शासन का तुम उल्लंघन करे, उसके अनुशासन का उल्लंघन करते हो, और किसके बल से ऐसा करते हो, जब ऐसे प्रश्न कर दिया। और प्रहलाद महाराज बड़े नम्र स्वर में कहे, पिताजी बल तो सबका एक ही है, अरे जो हमारा बल है तो वही आपका ही बल है, और आप हमारा और आपका ही नहीं, वो सबका बल वही है, चाहे ब्रह्मा हो या दूसरे लोकपाल हो। अब हिरण्यकश्यपु को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यार हमारा बल, हाँ अरे पावर हाउस तो एक ही है, दो नहीं है, और सब लोग उसके अधीन हैं। और वो कहा कि अरे ठीक से बतला किसके विषय में कह रहे हो, कौन बोल रहे हो, कि स ईश्वर काल उरुक्रमोस ओजा स सत्व बल इंद्रियात्मा, अरे उसको ईश्वर कहते हैं, उसका त्रिविक्रम नाम है, विष्णु नाम है, और वही इंद्रिय में बल देता है, मन में उत्साह देता है, और सब तरह से देता है, और वह इतना शक्तिशाली है कि वही सृष्टि का स्थिति प्रलय और सृष्टि करता है, सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, और वही बल। अब विष्णु का नाम सुना हिरण्यकश्यपु को तो बड़ा क्रोध आया, अरे विष्णु से तुम बल लेता होगा, हम क्यों लेंगे, और हमारा शत्रु हमको क्यों बल देगा, ये सब क्या बोल रहे हो। जब कहा कि हमारा शत्रु है वो हमको बल क्यों देगा, और हमारा इतना स्तर गिर गया कि हम शत्रु से बल लेंगे। अब प्रहलाद महाराज कहे कि देखिए शत्रु वो किसी के नहीं है, ये तो आप अपने मन से उनको शत्रु मान रहे, आपके मन का भाव है, तो अपने मन का भाव त्याग कीजिए और आप अपने मन के अज्ञान को दूर कीजिए, वे किसी के शत्रु नहीं है, आप मान लिए हैं, और आप ये जो कह रहे हैं कि हमारे प्रताप से तीनों लोग कांपते हैं, सब हमारे अधीन है, और देखिए यह कोई वीरता नहीं है, तीनों लोग को अधीन कोई कर लिया और अपने मन को अधीन नहीं किया, अपने इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त किया, तो उसको दिग्विजयी नहीं कहा जाएगा, शत्रु तो उसके साथ है। तो थोड़ा अपने आप थॉट को रिव्यू कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए, अपने मन को जीतने का प्रयास कीजिए। अब इतना सुना कहे कि तुम हमको उपदेश देने लगा, अब तो सीमा पार हो गया, अब मैं समझ गया कि एकदम तुम मरने पर लात रख दियो, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हो। व्यक्तम तुम मर्तु कामों से यो अति मात्रम विकत्सस्य, एकदम तो सीमा पार कर गया, हमको उपदेश देने लगा, ये साहस तुम्हारा। अब लक्षण से हम देख रहे हैं कि अब तुम मरने वाले हो, क्योंकि जो मरने वाला व्यक्ति होता है तो बड़बड़ाने लगता है, वो इलॉजिकल बात करने लगता है, तो वही लक्षण तुम्हें देख रहा है। यस्तया मंदभाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वर संबोधित कर रहा है मंदभाग्य, अरे तुमको बुद्धि तो कम है, तुम नहीं विचार कर रहे हो कि हमारे अनुगत होता तो सारा संपदा तुमको प्राप्त हो जाता, और ये तो तुमको कैलकुलेशन आता नहीं है। अब विष्णु का पक्ष लेकर के अपना भाग्य खराब कर दिया, धन संपदा से दूर रहेगा, राज्य नहीं मिलेगा, कष्ट या मंद भाग्य तो मदन्यो जगदीश्वर। अरे मान लो ए ईश्वर तो मैंने हमारे हमसे बढ़कर तो कोई है नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो कि कोई ईश्वर है वही बल देता है, तो रहता कहाँ है, उसका एड्रेस बतला हो, वो कहाँ ईश्वर रहता है, को जसव। तब तुरंत प्रहलाद महाराज के तो सर्वत्र रहते हैं, वो तो सब जगह हैं, वो सभा भवन में था, एक सर्वत्र रहते हैं। यदि सर्वत्र कस्म स्तंभे न दृश्यते, वो सामने खंभा था, पिलर था, कि सब जगह रहता है तो खंभे में क्यों नहीं दिख रहा है, सब जगह है तो सामने खंभे में भी दिखना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कहे कि हमको तो दिख रहा है। अरे कि तुम बहुत अटपटाह बात बोल रहे हो और कह रहे हो कि कोई ईश्वर है तुमको दिख रहा है, तो अब भी तुम्हारा गर्दन तुम्हारे शरीर से अलग कर रहा हूं, तुम्हारा सिर अलग कर रहा हूं, और देखता हूं कि कौन तुम्हारा ईश्वर है, कैसे तुमको बचा लेता है। अरे तुम्हारा ईश्वर है बल देता है, तो अभी गर्दन काटने जा रहा हूं, देख लेता हूं सब जगह है तो बचाएगा ना, तो जिसका तुम शरण लिए हो। तो एवं सुदुरुक्त मुहुरर दयन रुषा, इस तरह से कई एक बात आक्षेप किया, बहुत कठोर वचन बोला। और सुतम महाभागवतम महासुर, अपना पुत्र है और महाभागवतम वो बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, लेकिन उनको मारने के लिए तैयार हो गया, क्यों, महासुर, यह भी साधारण असुर नहीं है, यह भी असुरों में सरनामी है, अब महाअसुर है, इसलिए मारने खड्गम प्रतिगृह्य उत्पत्ति तो बरासना, वो इतना क्रोध में था कि एकदम तलवार लेकर के और आपसन से खड़ा हो गया। स्तंभम तदाति बल स्वमुष्टिना, लेकिन पहले सोचा कि अच्छा ये किसी के बल का आश्रय ले रहा है, उसको विश्वास तो नहीं है, हमको दिख तो नहीं रहा है, लेकिन कदाचित इसका कोई ईश्वर है, कोई सहारा है, तो पहले उसी को नष्ट कर देते हैं। और प्रहलाद को मारने के लिए तो तलवार लिया था और एकदम गर्दन काटना चाहता था, लेकिन कहा कि ये जो कल्पना बतला रहा है कि कोई ईश्वर है वो कदाचित होगा, तो पहले उसको खत्म कर देते हैं। तो जा करके उस खंभे पर, पिलर स्तंभ पर खूब जोर से तदात अति बल स्वमुष्टिना, अपने मुट्ठी से जा करके मारा, मुक्का से मारा, और जो ही वो खंभे पर मारा तदैव तन निनंदो भीषण, बहुत भयंकर आवाज हुई उसके आघात से, हमें ऐसी आवाज होए कि मानो ब्रह्मांड का आवरण ही फट गया, कटा का भेदन हो गया। यमुआ स्वधिष्णोपगतम त्वजा व्यस्तुत्वा, इतनी जोर की आवाज हुई उसके मुट्ठी के प्रहार से, उसके मुका के प्रहार से, कि उसकी आवाज ब्रह्मलोक तक गया। और इतनी भयंकर आवाज कि ब्रह्मा जी सोचे कि अब तो प्रलय का समय आ गया, अब तो हम लोगों का लोक नष्ट होने वाला है। और सब विक्रमण वो आवाज हुआ और वे अपने पुत्र को मारना चाहता था, प्रहलाद को मारना चाहता था। और वो भी आवाज सुना, बहुत भयंकर आवाज, तो आवाज तो सुनाई दिया लेकिन अंत सभायम न ददर्श तत्पदम, लेकिन आवाज कहाँ से आ रही है? अब कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था, तो आवाज इतनी भयंकर थी कि जितने असुर सेनापति थे सब भयभीत हो गए। लेकिन उतने भयंकर आवाज से भी हिरण्यकश्यपु बहुत भयभीत नहीं हुआ। वह विचार कर रहा था कि आवाज कहां से आ रही है, और वह अपने निर्णय से बदला नहीं, उसको प्रहलाद का वध करना ही था। वो ऐसे में खोज रहा था, देख रहा था, कोई पदवी नहीं, कोई स्थान नहीं देख रहा था कि कहां से अब आवाज आ रही है। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तुम च भूते स्वखिलेश चात्मन अदृश्यताद्भुत रूप मुद्बहन स्तंभे समायाम सभायाम न मृगम मानुषम। अब कह रहे हैं कि भगवान अदृश्यत प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए? अद्भुत रूप मुद्बहन, अद्भुत रूप के साथ धारण करके प्रकट हो गए। स्तंभे समाय सभायाम, उसी सभा भवन में, उसी खंभे से ही। अब भगवान ने इस अद्भुत रूप में आए हैं। अद्भुत रूप किस अर्थ में? न मृगम न मानुषम, न पशु दिख रहे हैं न आदमी दिख रहे हैं। भाई अद्भुत रूप में क्यों आए? क्योंकि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए। नारद जी कह रहे हैं कि अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए। अरे भाई किस भक्त के वचन को सत्य करने के? तो इमीडिएट अर्थ लीजिए, प्रहलाद जी कहे थे कि खंभा में हमको दिख रहे हैं सब जगह, तो वहीं से प्रकट हो गए। या प्रहलाद जी उपदेश देते समय, जैसा हम लोग दूसरे तीसरे दिन सुने होंगे, ये कहे थे कि भगवान की सत्ता सब जगह है, भौत केसु विकारेशु महत्सु सर्वत भगवान आस्ते। तो प्रहलाद के बात को सत्य करने के लिए खंभा से ही प्रकट हो गए। या हिरण्यकश्यपु भी भगवान का सेवक ही है, तो वह भी यह ब्रह्मा जी से कहा था कि हम आपके सृष्टि से न मरे, हमको वर दीजिए कि हम पशु से न मरे, आदमी से न मरे। तो उसके बात को सत्य करने के लिए ये अद्भुत रूप में, नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। या ब्रह्मा जी के बात को सत्य करने के लिए, नारद जी के बात को सत्य करने के लिए, हिरण्यकश्यपु के बात को सत्य करने के लिए। ओ, या जो भक्त हैं वो तो अपने भक्तों के बात को सत्य करने के लिए, या सनकादि के बात को सत्य करने के लिए। जब सनकादि लोग जय विजय को साप दे दिए, तो साप देने के बाद उनके मन में ग्लानी हुई और उन सेवकों के प्रति दया की भावना आ गई, तो वे लोग बोले थे कि तीन जन्म के बाद आप लोग वापस आ जाएंगे। भाई तो तीन जन्म होगा, तो पहले जन्म हुआ उसको नष्ट करेंगे तभी दूसरा जन्म होगा ना। तो सनकादि के बात को सत्य करने के लिए ये ब्रह्मा जी वर दिए थे कि तुम जो मांग रहे हो तो तुम्हारे वर की प्राप्ति होगी, तुम मनुष्य से नहीं मरोगे, आदमी से नहीं मरोगे। तो ब्रह्मा जी के बात को सत्य करने के लिए ये नारद जी इंद्र से बोले थे। इंद्र तो कयाधु को ले जा रहे थे मारने के लिए, और उनका आशय था कि गर्भ में स्थित शिशु को मारूंगा। तो नारद जी कहे थे कि ना, तुम इसका वध नहीं कर सकते। ओ कह रहे हैं कि अपने भक्त के बात को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। अब खंभे से प्रकट हुए वो अद्भुत रूप था, वो विचार कर रहा था कि यह अद्भुत रूप कहां से आ गया। तो वह ऐसा अनुभव करने लगा कि जो हमारा शत्रु है वही माया से ऐसा रूप बनाया है। तो तुरंत वो गदा ले करके और भगवान को मारना चाहा, भगवान के तरफ बढ़ा, और तब तक भगवान उसको पकड़ लिए, गदा सहित उसको पकड़ लिए। अब गदा सहित पकड़े और तब तक वो हाथ से निकल गया। भगवान भी उसके साथ थोड़ा खेल करना चाहते थे, तो पकड़े तो वैसे जैसे गरुण जी सर्प को पकड़ते हैं, लेकिन वो हाथ से निकल गया। अब हाथ से निकल गया तो उसको बहुत प्रसन्नता हुई कि हम में ताकत है, और पहले जो उसको निराशा थी वो समाप्त हो गई, और वो पैंतरा भाजने लगा गदा लेकर के, फिर हम में भी ताकत है, अब कोई अवसर ही नहीं। ऊपर नीचे ऐसे भाग रहा था कि पकड़ने का कोई अवसर ही नहीं मिल रहा था। और तब तक नृसिंह देव बहुत जोर का अट्टहास किए, इतना जोर का अट्टहास किए कि उसकी आंखें बंद हो गई, और फिर उसको लपक करके वैसे ही पकड़ लिए जैसे चूहे को सांप पकड़ता है, और अपने गोद में ले करके और उसके छाती को वैसे फाड़ दिए जैसे गरुण जी सांप को फाड़ देते हैं। जबकि उसके चमड़े के विषय में कह रहे हैं कि इसका इंद्र का वज्र भी उस पर खरोच नहीं ला पाया। इंद्र के वज्र में शक्ति है कि पहाड़ को धुर धुर कर देते हैं, पहाड़ को काट देते हैं, लेकिन अब इंद्र के वज्र जिसको नष्ट नहीं कर सकता, विदारण नहीं कर सकता, फाड़ नहीं सकता, और उसके छाती को भगवान फाड़ दिए, और फाड़ करके उसके माला को पहने। और वर्णन कर रहे हैं कि जैसे कोई सिंह है हाथी को मारता है तो उस पर खून के बिंदु लग जाते हैं, उसके आंत उसके गर्दन में आ जाते हैं। तो वैसे ही भगवान वध करके, और वध करने के बाद तो उसको छोड़ दिए, और दूसरे उसके जो साथी थे तो वे भगवान पर लपक रहे थे अपना हथियार ले करके, क्योंकि भगवान का हाथ ही वो सेना के समान था। भगवान के सैकड़ों सैकड़ों हाथ के कई एक हाथ के सैकड़ों गुच्छा थे, एक दो हाथ नहीं। तो मानो यही सेना है, नख ही हथियार है, और ऐसे सबको चीरने लगे। बहुत भयंकर रूप था, उनके रूप का वर्णन किया गया है कि जैसे तपाया हुआ सोना हो वैसे उनका आंख दहक रहा था, और मुंह खोले थे तो उसमें छुरी के समान तेज, तलवार के समान जीप लपलपा रहे थे। उनका मुंह और नाक गुफा के समान लग रहा था, बहुत भयंकर था, और सब लोग भयभीत थे। लेकिन हिरण्यकश्यपु का वध किए फाड़े तो उसके अनुयायी अब दौड़े, और भगवान सबको किसी को गदा से अपने हथियार से, किसी को ऐसे केवल हाथ से, किसी को नख से, सबको निरस्त कर दिए, सबको मार दिए, और हिरण्यकश्यपु को मार करके और भगवान उसी के आसन पर बैठ गए। जिस भगवान को बड़े बड़े ऋषि लोग पवित्र करके आसन देते हैं उस पर नहीं बैठते हैं, लेकिन उस दैत्य के आसन पर जाकर के स्वतः बैठ गए। यह भगवान का भक्त वात्सल्य। हम लोग शुरू में ही पढ़े थे अच्युतम, जो एक बार भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिया उसका भगवान त्याग नहीं करते, चाहे किसी भी दुर्दशा को प्राप्त हो, है तो अपना सेवक ही ना, भगवान को आत्मीयता है। उसके सिंहासन पर बैठ गए। लेकिन अब बहुत भारी समस्या थी कि हिरण्यकश्यपों का तो वध हो गया, लेकिन सब लोग भयभीत थे कि कहीं दूसरे का भी वध न कर दे। देखिये, नृसिंह अवतार और दूसरे अवतार में अंतर है कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो प्रायः ऋषि मुनि लोग, भक्त लोग भगवान को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, अभिषेक करते हैं। लेकिन नृसिंह भगवान अवतरित हुए तो एक समस्या है, उनके क्रोध को कैसे शांत किया जाए। तो इस लीला को देवता लोग ऊपर से देख रहे थे आकाश में छिप करके। एक बार जब भगवान के हाथ से निकल गया तो असाधु मन्य देवता तो बहुत भयभीत हुए कि तो बहुत भारी अनर्थ हुआ, लेकिन वध हुआ तब वे प्रसन्न है। लेकिन समस्या है कि भगवान बहुत क्रोधित हैं, तो सबसे पहले स्त्रियां ऊपर से फूल गिराने लगी। स्त्रियां सबसे आगे आई कि स्त्रियां दैन्य से युक्त हैं, उनको देख करके क्रोध शांत हो जाएगा। वो फूल की वर्षा करने लगे, देवता लोग भी ऊपर से ही कीर्तन करने लगे, नृत्य होने लगा, कोई नजदीक नहीं आ रहा था। तो नाति दूर है, थोड़ा सा नजदीक आए देवता लोग, कई एक लोगों का ग्रुप है, और वे आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। तब कैसे स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी, शिव जी और ग्रुप, इसको हम लोग अब यदि क्लास शेड्यूल्ड होगा जैसा चल रहा है, इसको हम लोग कल सुनेंगे।